قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. صدق الله العلي العظيم. اللهم رب أنت الإله القديم، وهذه سنة جديدة، فأسألك الإسم والقوة والاشتغال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. الصلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. آسٹریلیا کے چاند کے حساب سے 2 محرم 1442-43 ہجرہ کی مجلس ہے، 2 محرم، لیکن سورج ڈوب چکا ہے، اس لیے اس کو شب 3 محرم کی مجلس کہا جاتا ہے. اور آج کی یہ مجلس شب جمعہ ہے، اور میرا ساری زندگی کا طریقہ یہ رہا ہے اور پورا سال، کہ جب شب جمعہ ہوتی ہے تو شب جمعہ کے لیے اسلام نے ہمیں 3 خاص انسٹرکشنز دی. جمعہ کے دن کے حوالے سے تو لوگوں کو یاد ہے کہ نماز جمعہ ہوتی ہے، اب ہمارے یہاں دعائیں ندبہ بھی جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے. شب جمعہ کے حوالے سے مرنے والوں کے لیے فاتحہ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، لیکن روایتوں کو ذہن میں رکھیں تو شب جمعہ کے بھی 3 اہم پیغام ہیں پورا سال. اگر سال میں 48 شب جمعہ ہیں، یعنی اسلامی سال، یا 52، چاہے مختصر صحیح، مگر یہ 3 چیزوں کا حکم ہے. کہ نمبر 1، ہر شب جمعہ موت کو یاد کرو، جو ہمارے یہاں مرنے والے کے لیے فاتحہ ہوتی، لیکن خالی دوسروں کی موت کو نہیں، اپنی موت کو بھی. اور ہر شب جمعہ زمانے کے امام کو یاد کرو، کیونکہ وہ شب جمعہ ہی ہوگی جو غیبت کے آخری تاریخ ثابت ہوگی، آخری رات ثابت ہوگی، اور جس کے اختتام پر ظہور امام ہوگا. تو ہر شب جمعہ یہ سمجھ کے گزارو کہ جیسے یہ آخری شب جمعہ ہے اور صبح کو امام آنے والے ہیں، اور پھر اگر نہیں آئے تو رو، گڑ گڑاؤ، جیسے بچے نے اپنے باپ سے کوئی چیز کی فرمائش کی کہ یہ لے کر آئیے، اور باپ لے کے نہیں آیا تو بچہ رونے لگتا، دعائیں ندبہ. لیکن جمعہ کی صبح میرا عنوان نہیں ہے شب جمعہ. دوسری چیز زمانے کے امام کو یاد کرنا، اور تیسری اور آخری چیز دعا. وہی اللہ شب منگل کا بھی اللہ ہے، وہی اللہ شب اتوار کا بھی اللہ ہے، وہی اللہ شب بدھ کا بھی اللہ ہے، اور وہی شب جمعہ کا بھی. لیکن شب جمعہ دعا کی طاقت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور قبولیت بھی جلدی سے ہوتی. تو بہت ہی مختصر، پورا ہفتہ جو انسان کی دعائیں قبول نہ ہو وہ آج کی رات قبول ہوتی ہیں، تو ان کو یاد کرنا. اب ذہن میں خیال کبھی آ سکتا ہے کہ یہ تو غم کی ایسی راتیں ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو بھولا ہوا، تو دعا تو اس وقت مانگی جائے گی نا جب آدمی اپنے پرابلم ذہن میں لے کے آئے گا. اس کے لیے میں 2 دن پہلے پہلی مجلس میں تفصیل بیان کر چکا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ 3 چیزیں میں سارا سال ہر شب جمعہ چاہے مختصر صحیح بیان کرتا ہوں. اب ایام اضا کا پہلا عشرہ، گرچہ اس عشرے میں ہمیں 2 شب جمعہ مل رہی جو ذرا کم ہوتا ہے، آج بھی شب جمعہ ہے اور اگلی شب جمعہ جو شب عاشور بھی ہوگی آسٹریلیا کے کیلنڈر کے حساب سے. तो हमें ये तीन मौजूआत दो शबे जुमा में तकसीम करने का मौका मिल गया। लेकिन वैसे ही शबे जुमा तो है ही आज, लेकिन वैसे ही इस पहले अशरे का हमारा उन्वान या मौजू या टॉपिक ही ये है, इमाम जमाना विलायत अली और दज्जाल मेलबोर्नी। तो इमाम जमाना और विलायत अली, तो ये तो हमारा असल मौजू ही है कि इस पूरे अशरे में जमाने के इमाम पे बात करना है, और फिर तो शबे जुमा भी हमको मिल गई। कुरान करीम की जिन दो आयतों की तिलावत आज मैंने तीसरे दिन भी की, लेकिन अब तक इन आयतों के तर्जमे का मौका नहीं मिल सका कुछ तमीजी बातों की वजह से। तो आइए इन आयतों का तर्जमा किया जाए, और उसके बाद फिर ये आयतें जहन में रख के आज के दिन से असल मौजू पे बात को शुरू किया जाए। पहली आयत छठे पारे की आयत है, बल्कि छठे पारे की सबसे पहली आयत है। इसी आयत की बिना पे छठे पारे का नाम है ला युहिब्बुल्लाह। तो ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिसूए मिनल कौल, ये है हमारी आजादारी की दलीलों में से एक दलील। छठे पारे की पहली आयत, अल्लाह पसंद नहीं करता कि आदमी किसी भी सू को या बुराई को बयान करे। इस्लाम एक गुनाह के हवाले से भी मैसेज है जो आगे एक मजलिस में आएगा, कि गुनाह करना इतना नापसंदीदा अमल नहीं है जितना उस गुनाह को प्रोपेगेट करना। तो गुनाह करो, अव्वल तो करो ही क्यों, लेकिन अगर करो तो उसे छुपाओ। और ये एक अलग मौजू बनेगा, अगर जल्दी की वजह से मैंने बात को आगे बढ़ाया तो शायद मेरे अल्फाज ऐसे बन जाए कि जैसे मैं गुनाहों का शौक दिला रहा हूं। लेकिन गुनाह जितनी बड़ी खराबी है, उससे ज्यादा बड़ी खराबी है उसकी तशहीर। अब आज का तो माहौल ही ऐसा बन गया, जो दो दिन से मैं फरियाद कर रहा हूं, और मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, या टेक्नोलॉजी ना मेरा शोभा है, ना मुझे इससे कोई इंटरेस्ट है, ना मुझे इसके बारे में तफसील मालूम है। जवान खुतबा वो तफसील बयान करते रहते हैं कि आज तो ये सोशल मीडिया सिलसिला ही ऐसा बना कि जो दो चीजें इस्लाम पसंद नहीं करता बहुत सारी और चीजों के अलावा, वो ये सोशल मीडिया का काम ही यही है। इस्लाम कहता है नेकी करो, किसी को बताओ नहीं। हातम ताई के दास्तान में वो जो दूसरा सवाल था, नेकी कर दरिया में डाल, छुपाओ अपनी नेकी को। लेकिन ये सोशल मीडिया नाम ही इस बात का है कि जरा सी इतनी सी भी आप नेकी करेंगे तो फौरन उसकी आपको यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर उसका क्लिप चला जाए और अपडेट कर ले अपने स्टेटस को, हर नेकी का तस्किरा। और गुनाह के हवाले से भी यही है, इस्लाम कहता है गुनाह करो तो उसको भी छुपाओ, यानी यहां तो है कि करो ही क्यों लेकिन छुपाओ। लेकिन वहां भी वही कि जो गुनाह करने वाले हैं, ऐसे ऐसे शरीफ घराने की सैदानी बच्चियां, वो टिकटॉक के चक्कर में जितने उनके पोज और लिबास और उनके डांस और जिनकी जितना वो म्यूजिक, बिल्कुल एक अलग मौजू पे मैं जा रहा हूं जो जाना नहीं चाहता। लेकिन जो बात ये हो रही थी कि नेकी को भी लोगों के सामने पेश करना पसंदीदा नहीं, सिवाय उन दो चीजों के जो मैंने अपनी पिछली तकरीर में, यानी अय्याम अज़ा से पहले की जो तकरीर थी कि जहां लोगों को दिखाकर नेकी करने के बारे में कुछ बात की गई थी, उसके अलावा नेकी छुपाओ। और गुनाह के हवाले से भी यही बात हो रही है, लेकिन छठे पारे की पहली आयत का तर्जमा अर्ज कर रहा था जिसमें ये छोटी सी मौजू से हट के बात आ गई। ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सू, ला युहिब्बु अल्लाह पसंद नहीं करता, अल जहर बावाज बुलंद, हमारे यहां मगरिब ईशा और फजर की नमाज को कहा जाता है जहरी नमाजें, बावाज बुलंद पढ़ी जाने वाली, तो अल्लाह पसंद नहीं करता। इल्ला मन ज़ुलिम, मगर सिर्फ उस जुल्म को या उस खराबी को अल्लाह बयान करना पसंद करता जो मजलूम जालिम के खिलाफ बयान कर रहा। आजादारी की बुनियादी ये, जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करना छठे पारे की पहली आयत। और मजलूम को ये अल्लाह ने हक दिया। आज की जो दो आयतें मैंने तिलावत की हैं, एक में मजलूम का हक बयान हो रहा है, एक में उसके वारिस का हक बयान हो रहा। मजलूम का हक है, उसे ये इख्तियार हासिल कि जालिम के जुल्म को बयान करे। मजलूम कौन है? आका हुसैन? मजलूम कौन है? करबला के शहीद? मजलूम कौन है? कूफा और शाम के असीर? जी नहीं, हम सब मजलूम हैं। जो करबला में जुल्म हुआ है वो सिर्फ आका हुसैन पे नहीं हुआ है, वह कयामत तक आने वाले इंसानों पर हुआ, और रिवायतों में इसकी तशरीह भी है। और जो मैंने एक इशारा कल किया था कि अगर मासूमीन को उनका हक पहले मरहले पे मिल जाता तो हम सब के लिए ये दुनिया जन्नत बन जाती। आज दुनिया में जितने जुल्म हैं और खराबी है जो जिसका जिसके हम लोग विक्टिम बनते हैं, आम मजालिम की मैं बात कर रहा हूं, यानी अगर भाई मैं बहुत ही भोंडे अंदाज में बात करूं इस वक्त, अल्फाज को बनाने संवारने का वक्त नहीं, कि बहुत ही छोटे छोटे भी हमारे मसाले, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बीमारियां फैल रही है, बीमारी तो खैर आलमी मसाला, ये सब जुल्म क्यों हो रहा? इसलिए कि अहले बैत को उस वक्त उनका हक नहीं दिया गया कि अगर उस वक्त उनके हाथ में हुकूमत आ जाती विलायत, तो जो हम इमाम जमाना की हुकूमत का कंसेप्ट रख रहे हैं वो मौला अली की हुकूमत हमारे सामने पेश करती। हम मजलूम, ये जुल्म हम पर हुआ। हर वो मुसीबत और परेशानी जिसको हम अपने जमाने में फेस कर रहे हैं, इसका सिलसिला वहां से मिला है, तो ये हमें हक इस्लाम दे रहा कि तुम उन जालिमों के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करो। और फिर आका हुसैन का गम तो है ही अपनी जगह। ये है मजलूम को इख्तियार, सूरह छठे पारे की पहली आयत। मैं हवाला पारे का इसलिए दे रहा हूं कि आसान है यह हवाला, पहली आयत। और दूसरी आयत सूरह बनी इसराइल की, जिसमें वारिस का हक बताया गया है, वमन कुतला मजलूमा, और जो दुनिया में मजलूम मारा जाए, फकत जअलना लवलीही, हमने उसके वली के लिए, हमने उसके वारिस के लिए यह हक दिया है सुल्ताना, तुम्हें इख्तियार दिया गया है कि तुम कातिल से इंतकाम और बदला लो, और इसका नाम है इमाम जमाना। हुसैन शहीद किए गए मजलूम, वली और वारिस कौन है? वली उद्दम कौन है? वारिस कौन है? खून का इंतकाम कौन लेगा? जमाने का इमाम। तो ये दो आयतों का मैंने खाली तर्जमा आपके सामने किया और शायद 10 मिनट इसमें निकल गए, लेकिन चूंकि दो दिन से ये आयतें तिलावत की जा रही थी, न तर्जमा हो रहा था, न इनका रब्त हमारे मौजू से बन रहा था। अब आइए इन आयतों की रोशनी बात को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन बात इसी तरह आगे बढ़ेगी, लेकिन दो रातें पहले की दो और छोटी बातें वाजे कर दूं। वाजे तो नहीं करूं, रब्त मिलाऊं। एक तो खैर समझिए कि खाली याद दहानी, कल 3 मुहर्रम का दिन है ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, तो कल वो दिन है जब हजरत यूसुफ 14 साल की कैद के बाद रिहा होते हैं, और किस तरह कैदी वजीर आजम बन रहा। कैदी कैसे रिहा होता है? यहाँ रिहाई नहीं है, कल उस इस तरह कैद से निकल रहे कि कल कैद से निकल के कैदखाने की कोठरी से वजीर आजम की कुर्सी पर तशरीफ रखने जा रहे हैं हजरत यूसुफ। वो वाकयात बहुत मशहूर है, और अगर रब्त मिलाने के लिए उसकी तफसील भी बताना पड़े तो आज बिल्कुल मौका नहीं। वो 3 मुहर्रम जो अल्लाह ने हजरत यूसुफ, और ये एक पैगाम है कि इस कैद खाने को आप क्या समझिए, इसको गायबत समझिए। 14 साल यूसुफ अपनी उम्मत से गायब हैं, जैसे आज हमारे जमाने का इमाम गायब है। 3 मुहर्रम वो तारीख है कि जब हुज्जत खुदा गायबत से निकलती है और इख्तदार को हासिल करती है। तो इसी को जहन में रखकर कल का दिन गुजारिए, और इसीलिए जो दो रातें पहले मैंने अर्ज किया कि कल हर हाजत पूरी होने का दिन है, औलाद वाला 1 मुहर्रम का रोजा, और रिस्क के हवाले से 2 मुहर्रम का रोजा, लेकिन 3 मुहर्रम हर हाजत और हर मुसीबत और परेशानी। कैद खाने में आदमी, और खास तौर पर अगर बेगुनाह कैद किया गया हो, तो कैद खाने की मुसीबत इतनी बड़ी मुसीबत होती है कि लोग पागल हो जाते हैं। क्योंकि मैंने भी कैद में कुछ अरसा गुजारा था, लेकिन आगे जुमला न कहूं तो शायद गलतफहमी हो, अलबत्ता वो कोई चोरी डकैती स्मगलिंग ड्रग्स का मसला नहीं था। वो जो 1983 में कराची के अंदर मस्जिद जलाई गई और फिर बंदर रोड पे धरना दिया गया, तो उस हवाले से तो मैं जानता हूं कैदियों की नफसियात, एक किताब में पढ़ना और है और खुद उस मरहले से गुजरना और। तो खुलासा ये है कि एक तो इसमें वो पैगाम है कि हुज्जत खुदा गैबत से आ रही है इख्तदार पर। इख्तदार हुज्जत खुदा का कोई मसला नहीं है, लेकिन विलायत का मतलब ही इख्तदार। और दूसरा ये कि हर मुसीबत और परेशानी का खातिमा हो सकता है तीन मुहर्रम की दुआ से, लेकिन रोजे के साथ ये दुआ हो तो क्या कहना। लेकिन जो किसी वजह से रोजा नहीं रख पाते हैं, बीमारी हो सकती है, सफर हो सकता है, घर के सफर में एक तरीका है, नजासत हो सकती है, बहुत सारी बातें, ये तो खाली याद दहानी थी। और दूसरी बात कि दो रातें पहले मैंने वो दुआ आपके सामने पेश की थी जो नए साल की हमें सिखाई गई है इस्लाम में। नए साल के हवाले से हर जगह हर कौम में एक तरीका होता है कैसे नए साल को मनाया जाए, जो भी उनका साल हो, चाहे वो 1 जनवरी हो, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में चाइनीज कल्चर से भी वाकिफ है, चीनियों का नया साल हो, हिंदुओं का नया साल हो, हर एक तरीका होता। इस्लाम ने जो हमें एक तरीका सिखाया वो दुआ है, और ऐसी दुआ है जिसके अंदर एक तरह से चार बातें मांगी गई। पहली अजीब दुआ है, ये दुआ अजीब है। आम तौर पर दुआ का तरीका है कि पहले अल्लाह की तारीफ होती है, अल्लाह की अजमत बयान की जाती है, अल्लाह के अहम अहम नाम होते हैं, फिर हाजत। इसमें ऐसा नहीं, पहले हाजत है, आखिर में अपनी हाजत है, बीच में अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम, और अल्लाह के नाम या गयासल मुस्तगीसीन, या करीम, या मुनीम, या इमाद मन ला इमाद लहू, या सनद, ये बीच दुआ में है। तो इस दुआ पे बात करना मकसद नहीं है, क्योंकि वक्त मेरे हाथ से फिसल फिसल के निकल रहा। पहला जुमला, अल्लाहुम्मा अंतल इलाहुल कदीम, आए खुदा तू तो हमेशा से रहने वाला खुदा। साल नया आया, साल पुराना हुआ, एक उम्र में एक साल का इजाफा हो गया, ये सारी चीजें अल्लाह के लिए नहीं, टाइम एंड स्पेस इंसानों का प्रॉब्लम है, अल्लाह का नहीं। तो अंतल इलाहुल कदीम, तू तो हमेशा का माबूद, लेकिन वहाज ही सनतुन जदीदा, हम इंसानों के लिए एक नया साल। तो बस अस अलो का, हम इस नए साल में तुझसे तीन दुआएं मांग रहे हैं, अल इस्मता वल कुव्वता वल इश्तिगाल, या करीम, ऐ करीम। यानी ये लफ्ज करीम जो है एक तरह से अल्लाह की शान के मुकाबले में जरा छोटा लफ्ज है, लेकिन चूंकि दुनिया की किसी जबान ऐसा कोई लफ्ज ही आज तक नहीं बना जो अल्लाह की शान एक करामत को बयान करे, तो इसी को इस्तेमाल कीजिए, या करीम, ऐ करीम। तीन चीजें दे दे, तहफ्फुज, बचाओ, प्रोटेक्शन, किससे, मिन शैतान, इस पूरे साल। वल कुव्वा, ताकत, वो स्पिरिचुअल पावर, ये ताकत किसके खिलाफ, बिन नफ्स, मेरे उस नफ्स के खिलाफ जो मुझे मुझसे गुनाह करवाता। वल इश्तिगाल, और मुझे बिजी कर दे या शौक दिला दे उन कामों का जो तुझसे करीब करती। तीन चीजें आपने नए साल के शुरू में मांगी है पूरे साल के लिए, ये कहकर के याद करी। और दुआ का आखिरी जुमला है, और बीच में जो है सिर्फ अल्लाह के मुख्तलिफ नाम। आखिरी जुमा, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, और ऐ खुदा ईमान तो हमारा सलामत रहे। क्योंकि इस आयत पर मैं बहुत मजे से पढ़ता हूं, तो मैं बहुत अपने आप को रोक रहा हूं। अच्छा, अब यह खुलासा हुआ कि ये तो परसों बात आ गई थी, और परसों ही के लिए सही भी थी, पहली मुहर्रम, आज तो तीसरी की शब लग गई। आज मैंने इसको क्यों दोबारा याद दिलाया, इसलिए याद दिलाया कि इस दुआ में आपने अल्लाह से जो तीन चीजें पहले लाइन में और आखिरी चीज आखिर में मांगी, चौथी चीज आखिर में मांगी, तो जो सबसे पहली चीज, आए खुदा अल इस्मत मिन शैतान, मुझे शैतान से इस्मत, महफूज हो जाऊं, बच जाऊं, शैतान से प्रोटेक्शन दे, शैतान मुझ पर कंट्रोल ना कर सके। तो आप देखें, ये तो आपने एक दुआ मांगी, और हम हर अच्छे काम का आगाज इसी दुआ से करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐ खुदा हम तेरी पनाह में आ रहे हैं शैतान से भाग कर। लेकिन रोजाना, दिन में कई बार, बार बार ये जो प्रॉब्लम हमको पेश आता है कि शैतान हमारे पीछे लगा, उसे बचना है, उससे भागना है, उससे फरार इख्तियार करना, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि जब आदमी को बार बार फेस करना पड़े, तो आदमी पूछता है कि भाई इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन बता दीजिए। अब जैसे कराची के वो मोमिनीन जो मेरी उम्र के हैं, पहले हमारे यहां बिजली जाती थी, लोड शेडिंग होती थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती थी। एक तो जमाना तो ऐसा था कि वो तो खैर अब बयान भी करे तो आज के बच्चों को यकीन नहीं आएगा, ये मैं इलेक्ट्रिक के हवाले से बात कर रहा हूं। लेकिन फिर ये हुआ कि बार बार बिजली जाने लगी, लोगों ने कहा कि भाई इसका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, तो फिर वो यूपीएस और उसके बाद जनरेटर आ गए कि ये जो बार बार बिजली जाती है तो इससे बचने के लिए ये एक सोल्यूशन है कि इतनी जहमत नहीं हो। वरना क्या हुआ, बिजली गई, घर से निकल के बाहर आके सड़क पे बैठ गए और पंखा हाथ में झल रहे हैं कि कब आती है बिजली, चले महीने में एक बार हो तो बर्दाश्त हो जाए, हफ्ते में एक बार हो तो बर्दाश्त हो जाए। अब बेचारी औरतें क्या करें, उस जमाने में तो औरतें हिजाब भी करती थी, लेकिन आज भी बेहिजाब औरतें सड़क पे फुटपाथ पे इस तरह से तो पैर लटका के नहीं बैठ सकती जैसे हम लोग बैठते हैं। तो खैर, खुलासा ये कि सोल्यूशन होना चाहिए, एक आध दफा हो तो ठीक। कराची में एक जमाने में पानी का कितना अच्छा इंतजाम था, कराची की बात कर रहा हूं मैं, मक्के की बात नहीं कर रहा हूं कि आपके यहाँ वो 4,000 साल पुरानी बात होगी। तो अब वहां पानी का क्या है, हम लोग फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर मैं रहता था और जो गवर्नमेंट की लाइन में पानी आता है सेकंड फ्लोर पे वो आता था और शावर इतना तेज उस वक्त सेकंड फ्लोर पर, फिर पानी कम हुआ, बंद होने लगा। तो कोई परमानेंट सोल्यूशन है का? हाँ, एक अंडरग्राउंड टैंक बनाए, एक ओवरहेड टैंक बनाए, फिर वो बिजली की मशीन लगाए तो ये सोल्यूशन हो जाएगा, पानी नहीं भी आ रहा है तो आपके पास पानी है। ये कॉमन सेंस की बात है जो शायद मैंने कुछ ज्यादा फैला दी। शैतान हर वक्त हमारे पीछे लगा, जितनी बार आप अऊज़ु बिल्लाह कहते हैं इसका मतलब ही है कि आपको ये एहसास है कि शैतान है पीछे, भागो भागो बचो, अल्लाह की पनाह में जाओ। और अगर हम इतना ज्यादा नहीं भी कहते तो कहना चाहिए। तो अब ये कि कुछ सलूशन इसका परमानेंट नहीं हो सकता कि ये बार 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 हमको भाग के जाना पड़ता है, बार बार भाग के जाना पड़ता है अल्लाह की पनाह में शैतान से बचकर। तो यूं तो अल्लाह के पास बार बार जाने में कोई हरज नहीं, लेकिन आप कह रहे शैतान से बचकर, हाँ बहुत आसान इसका परमानेंट सोल्यूशन। जैसे आपके यहाँ लाइट जाती है आपने जनरेटर लगा ली, और आपके यहाँ पानी नहीं आता है गवर्नमेंट की लाइन में तो आपने ओवरहेड टैंक लगा के पानी की मोटर लगा के उस मसले को हल कर लिया, इसका सोल्यूशन है। वो क्या, उस कमबख्त शैतान की ही गर्दन मरोड़ के उसको मार दे। भाई शैतान ही अगर ना रहे, मर जाए, तो कितना आसान हो गया मसला कि अब ना तो उससे बचना पड़ेगा, ना भागना पड़ेगा, ना हर साल के शुरू में कहना पड़ेगा कि असअलुकल इस्मता मिन शैतान या करीम, ऐ करीम मुझे शैतान से बचा ले, वो है ही नहीं। बहुत ही आसान सोल्यूशन है। तो अब आप कहेंगे कि मौलाना ये कौन सा आसान सोल्यूशन है, तो कोई सोल्यूशन ही नहीं, ना शैतान को जिंदा रखना हमारे कंट्रोल में, ना मारना, नहीं कंट्रोल में है, बहुत ही आसान। सूरह हिजर में और सूरह साद, कुरान करीम के दो सूरे, एक का नंबर है 15, एक का नंबर है 38, दोनों के अंदर इस मसले का सलूशन दिया गया और बहुत ही मशहूर आयतें हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। आला रब फांजिरनी इला यौम युबसून, जिस दिन शैतान को निकाला गया बारगाह इलाही से, फखरोज मिन्हा इन्नका रजीम, तूने आदम को सिजदे से इनकार किया, निकल जा यहां से, तू रजीम है। तो शैतान ने कहा कि काला रब, ये दो जगह आयतें आई हैं, दो जगह पूरा वाकया आया है। फंजर ने इला यौम युबसून, तो आए खुदा मुझे कयामत के दिन तक की मोहलत दे दे, ठीक है मैं जा रहा हूं लेकिन मुझे इतनी मोहलत दे दे। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, रेस्पेक्ट, ऐसे ही कोई लफ्ज है, RESPECT, रेस्पेक्ट, इतनी मोहलत दे दे कि मैं कयामत तक, बाकी जो कुछ तुझे मुझे अजाब वजाब देना है, सजा देना है बाद में, यहां तक की। खुदा ने क्या कहा, काला, खुदा ने कहा कि नहीं, कयामत तक की मोहलत नहीं मिलेगी। فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ, हम तुझे मोहलत देते हैं, अब मैं टाइम बचाने के लिए शॉर्ट में तर्जुमा कर रहा हूं, हम तुम्हें मोहलत देते हैं, चलो तुमने मांगी देते हैं, ज़हूर इमाम ज़माना तक के लिए, वहां तक तुझे मोहलत, वक्त मालूम, बहुत तफसीलात हैं इसमें, तफासीर में, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, बात और मशहूर बात भी है, मशहूर बात भी। शैतान ने कयामत तक की मोहलत मांगी कि उस वक्त तक मुझे छोड़ दे, फिर जो कुछ सजा वजा देना है उसके बाद दे। कहा नहीं, वो तो नहीं, ज़हूर इमाम ज़माना तक, मैं अपने अल्फाज कह रहा हूं, अल्लाह ने तो इमाम ज़माना नहीं कहा होगा, अल्लाह ने कहा कि मेरी आखिरी हुज्जत के आने तक तुझे मोहलत, उसके बाद नहीं। तो अब इमाम का जहूर वो वक्त है जिसके बाद शैतान की मौत है, और ये रिवायतों में तफसील, बल्कि यहां तक जुमला कि खाली शैतान मारा ही नहीं जाएगा, पैगंबर के हाथों से कत्ल होगा जहूर इमाम के बाद, इमाम जमाना शैतान को कत्ल नहीं करेंगे, पैगंबर इस्लाम शैतान का खात्मा करेंगे, वो पूरी तफसीलात हैं। मौका मिला तो कुछ छोटी छोटी बातें अगली मजलिसों में आएंगी। फिर शैतान एक जुमला कहकर गया जो मेरी कल की यानी आने वाला कल या परसों की मजलिस को अनुमान बनेगा और बहुत अहम मौजू है। मैंने पहली मजलिस में एक जुमला कहा था ना, वही जुमला इस वक्त दोहराता हूं कि ऐसा माहौल हमारा आजादारी का बन गया कि हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शहंशाह हुसैन नकवी साहब की जो इस्तकबाल मुहर्रम की मजलिस है, तड़प के फरियाद करते हैं कि आजादारी को इतना कमर्शियल न बनाओ। खैर, तो मैं पहले भी इस पे बात करता रहता हूं। ये जो आयतें ना, इसका इससे ताल्लुक है, लेकिन सिर्फ सवाब की खातिर के पूरा शैतान और अल्लाह का जो डायलॉग है वो कंप्लीट हो जाए, मैं ये दो आयतें पढ़ रहा हूं। काला फब इज्जत काला उखवे अन्नहु मजमाई, आए खुदा, अच्छा वो अल्लाह से ही जंग कर रहा है और अल्लाह की कसम भी खा रहा है। फब इज्जत का, आए खुदा तेरी इज्जत की कसम में तेरे सारे बंदों को बहकाऊंगा, इल्ला इबादा का मिन हुमुल मुखलिसीन, सिवाय मुखलिस बंदों के। ये दो आयतें एक अलग मजलिस का मौजू बनेगी और आजादारी कितनी कमर्शियल है उसके हवाले से जब बात होगी। लेकिन अभी यहां तक बात, ज़हूर इमाम हमारे प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन, इमाम को जाहिर कर ले और शैतान खत्म। और इमाम का ज़हूर क्या हमारे इख्तियार में है? जी हाँ, ये रिवायतों में बार बार लफ्ज आया है, बल्कि खुद इमाम जमाना का ये फरमान है, वजूदहु लुत्फुम मिन अल्लाह, हमारा वजूद अल्लाह का एक एहसान है तुम पर और हमारी गैबत तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। अब इसकी तशरीह बाद में किसी मौके पर होगी, आज तो वक्त नहीं है। तो ये परमानेंट सोल्यूशन है शैतान से बचने वाली दुआ का। सारी दुआएं जो शैतान से बचने वाली है ना, वो सब आप बंद करके रख दीजिएगा जिस वक्त ये सोल्यूशन हो, यानी मर जाए जब शैतान, चाहे वो दुआ अदीला आप पढ़ते हो वो भी आप एक तरफ रख दीजिएगा, चाहे औज़ु बिल्लाह कहते हो, चाहे ये अल इस्मत मिन शैतान कहते हो, ये सारे बस किसी तरह से इमाम आ जाए। और इमाम जो आएंगे तो पहला मेरा सवाल यह है कि इमाम के आने का मकसद क्या, इमाम क्यों आएंगे, वाई? ये है, इमाम के आने का मकसद है गदीर में जो ऐलान रसूलुल्लाह ने किया था, अगला जुमला मैं कह रहा हूं, इसको तौहीन का जुमला ना समझिए, जो गदीर में ऐलान रसूल खुदा ने किया था और जिस ऐलान को मौला अली नाफिज ना करवा सके, ये न करवा सके में जरा सा तौहीन का पहलू झलक रहा, इंप्लीमेंट नहीं कर सके मौला अली, गदीर के रसूल वाले ऐलान को जो आदमी इंप्लीमेंट कराएगा उसका नाम इमाम जमाना। इमाम जमाना का सिर्फ एक मिशन, सिर्फ एक मिशन, ऐलान गदीर पर अमल करवाना जो मौला अली ना करवा सके। अब ये ना करवा सके को समझा दूं, वरना मुझे भी एक शर्मिंदगी का और गुनाह का एहसास रहेगा। करवा सकते थे, लेकिन बार 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 एक जुमला का, और वो जुमला क्या था कि जो अहद मुझसे रसूलुल्लाह ने लिया था मैं उसकी वजह से मजबूर। पैगंबर ने एक अहद लिया था मौला अली से इसी बात पर कि तलवार नहीं निकालना, कहा उसकी वजह से मैं मजबूर हूं। चुनाचे कल जो मैंने इशारतन एक रिवायत तारीख का एक वाकया बताया, और आज भी इशारतन ही बता रहा हूं, वक्त बहुत तेजी से मेरे हाथ से निकल रहा है, वो ये कि जब वो 12 साबे रसूल जिनमें 8 मुहाजरीन है 4 अंसार, हजरत अबू अय्यूब अंसारी उसमें शामिल है जो पैगंबर इस्लाम के सबसे पहले होस्ट बने थे मदीने में, और आज भी टर्की लोग जाते हैं इस्तंबुल की दीवार के बाहर, एक ही तो जियारत है हजरत अबू अय्यूब अंसारी, ये आखिर वक्त तक मौला अली की मोहब्बत में साबित कदम रहे, लेकिन और बहुत सारे 12 नाम है। जब उन्होंने कहा था कि मौला हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और उनमें एक नाम मिखदाद का है, एक नाम मिखदाद का है, याद रखिए मिखदाद के 3 बहुत अहम वाकयात हैं, ये असहाबे रसूल हैं, ये हमको इसलिए पढ़ना ताकि आपके जहन में ये मिस अंडरस्टैंडिंग जो है ये दूर हो जाए कि मौला का साथ किसी ने नहीं दिया, साथ देने वाले हैं और मौला कह रहे हैं कि साथ मत दो, यानी न मत दो का मतलब मैदान में ना निकलो। मिखदाद का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि बाद में एक जंग में हजरत उमर को जरूरत पड़ी एक बड़ी फौज भेजने की, सिर्फ चार आदमी भेजे उन्होंने और ये कहकर भेजे कि इनमें से हर आदमी जब वो जिसने मदद मांगी थी जिस कमांडर ने उसने कहा था कि दुश्मन ज्यादा है मैं मुकाबला नहीं कर पा रहा हूं मुझे 4000 की एक फ्रेश आर्मी भिजवाई जाए फ्रेश आर्मी 4000 उस जमाने की दुनिया की डेमोक्रेटिव क्या डेमोग्राफी को जहन में रख के सोचिए 4000 बहुत ज्यादा 4 आदमी भिजवाए और कहा कि यह ना समझना कि मैंने तुम्हारी दरखास्त को ठुकरा दिया इनमें से हर आदमी 1000 के बराबर और पहला नाम मिखदाद का था मिखदाद इब्ने अस्वद बहुत अजीम साहबी है बहुत अजीम साहबी है क्योंकि मेरे असल मौजू से इनका ताल्लुक है इसलिए बात कर रहा हूं मिखदाद इब्ने अस्वद एक इन्होंने जुमला पैगंबर के सामने ऐसा कहा कि सारा आलम इस्लाम मरते दम तक तड़पता रहा काश ये जुमला हमारी जबान पे आता और एक इनका जुमला गैबत इमाम के हवाले से बहुत अहम और एक इनका जुमला हुजूर इब्ने अदी ने जो ये कहा पहले मेरे बेटे को कत्ल करो उसके हवाले से बहुत अहम है ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं लेकिन ये असहाब इमाम के असहाब रसूल के ये हालात बहुत जरूरी है क्योंकि सहीफा कामिला हमारे पास दुआओं की सबसे मोतबर किताब है सबसे मोतबर मोस्ट ऑथेंटिक उसकी चौथी दुआ क्या है चौथे इमाम असहाब रसूल के हक में दुआ कर रहे हैं कभी खाली उस दुआ का तर्जमा जाके पढ़िए कि किस तरह से चौथे इमाम ने असहाब रसूल को जो बावफा थे तारीफ की है कैसे उनके हक में रो रो के दुआ की है सहीफा कामिला दुआ नंबर 4 तो मैं आ जाऊं कि मिखदाद का मौजू छिड़ गया सिर्फ गैबत इमाम की वजह से एक अकेला मिखदाद हजरत उमर भेज रहे हैं और कह रहे हैं ये 1000 के बराबर ये पैगंबर के उन मुखलिस साहबियों में है जिन्होंने तमाम जंगों में पैगंबर के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट किया सलमान फारसी खंदक के मौके पर आए थे अबू दर खंदक के बाद आए थे ये शुरू से साथ थे बदर उहद खंदक खैबर मिखदाद तो मिखदाद भी उसमें शामिल है 12 में या अमीर अल मोमिनीन हम तलवार चलाना चाहते हैं और हमें पता है कि दुश्मन की ताकत कितनी हमारे मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती और मौला ने रोक दिया कल ये बात आई थी एक जुमला मैंने अर्ज किया था तो मैं कह रहा हूं कि मिखदाद इसलिए आपके सामने उनका इतना जिक्र आ गया मिखदाद की एक खासियत एक अजीब बात एक अजीब हदीस मैं पढ़ रहा हूं जो आम लोगों के लिए आम मोमिनीन के लिए बहुत अजीब है मिखदाद के हालात पर मैंने 1980 में 1.5 घंटे की तकरीर की है अपने उस तकारीर के सिलसिले में असहाबे रसूल मोहसिनान इस्लाम तो सलमान फारसी अबू दर गफारी के बाद मिखदाद है एक बहुत अजीब हदीस और ये हदीस पूरा आज मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि आज का मौजू कुछ और अगर जरूरत पड़ी तो पूरी वजाहत बाद में करूंगा लेकिन एक इशारा पैगंबर के तमाम असाब में अफजल तरीन साहबी टॉप ऑफ द लिस्ट सलमान फारसी मगर मासूम ने कहा मिखदाद एक खसूसियत में सलमान से भी ऊपर सलमान मिखदाद के बाद में आते कौन सलमान के ईमान के 10 दर्जे हैं सलमान ने 10 के 10 हासिल कर लिए मगर कहा मिखदाद में एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है कि सलमान में भी नहीं है अब ये जरा सलमान की तौहीन हो रही है जो मिन्ना अहलुल बैत है तो इसलिए वाजे कर दूं कि फर्ज कीजिए कि एक कोई भी एजुकेशन की डिग्री हो फर्ज कीजिए कि मसलन ग्रेजुएट 10 सब्जेक्ट हैं अब एक आदमी ऐसा है 9 सब्जेक्ट में टॉप है 10वें में वो सेकंड है और एक ऐसा दूसरा है कि जो किसी एक सब्जेक्ट में सबसे आगे निकल गया बाकी 9 में वो सेकंड नंबर पर तो ओवरऑल तो जिसने 9 में टॉप किया है उसी के नंबर ज्यादा होंगे वो सलमान है मगर एक चीज ऐसी है कि जिसमें मिखदाद सलमान से भी अफजल है तो अबू दर और अम्मार को तो छोड़िए और वो क्या चीज है ये मेरे मौजू से अब देखिए मुताल्लिक हो रही मासूम ने फरमाया कि मिखदाद का दिल जो है वो खालिस लोहे का टुकड़ा है यानी लोहे को सख्ती की वजह से लोहे का टुकड़ा हर चीज के अंदर थोड़ी बहुत नरमी हो सकती है, मिकदाद के दिल में यानी अकीदे में कोई नरमी नहीं है। फिर इमाम ने एक और लफ्ज कहा जो मैं वेस्ट की नस्ल को नहीं बता सकता, उसको बता सकता हूं जो उर्दू या अरबी लिखना या पढ़ना जानते हैं, क्योंकि आजकल तो हर चीज रोमन में होने लगी है ना, टेक्स्ट मैसेजेस हो के, यूट्यूब हो के, फेसबुक हो के। क्या कहा? सलमान की मिसाल नहीं, मिकदाद अरबी के, अरबी जो लेटर्स हैं अलिफ बापा का अलिफ की है। अच्छा क्या मतलब इसका? कहा जैसे अलिफ, और इमाम ने कहा जैसे कुरान में अलिफ, अलिफ की खासियत यह है कि अलिफ के बाद कोई भी आप लेटर लिखे, अलिफ किसी से जुड़ता नहीं, वो हमेशा अकेला रहता। अलिफ को आप किसी के साथ जोड़ नहीं सकते, अलिफ हमेशा अकेला रहेगा। अलिफ के बाद की बात हो रही है, अलिफ के बाद कोई भी आ जाए। अब जो लिख सकते हैं उर्दू वो जहन में ले आए कि अलिफ के बाद बे लाए या जीम लाए कि चाहे ये लाए कि लाम लाए, अलिफ अकेला। कहा ये मिकदाद की मिसाल, किस हवाले से ये बात हो रही? का मिकदाद हम अहले बैत का ऐसा मानने वाला कि अमल को छोड़ो, कभी उसके दिमाग में भी हमारे किसी हुक्म के हवाले से जरा सा वसवसा नहीं आया। रावी ने एक जुमला कहा, यह आपका भी सवाल होगा लेकिन आज इसका जवाब नहीं दूंगा वरना आज का मौजू रह जाएगा। रावी ने जुमला कहा, रावी ने कहा कि मौला क्या सलमान में भी ये खासियत नहीं है? सलमान जैसा पक्का मोमिन जो अहले बैत में शामिल है? कहा कि नहीं। ये बहुत अजीब बात है, सलमान की तौहीन ना होने पर। ये ऐसा है कि जैसे कोई आदमी किसी पेपर में 99 ले, दूसरा 98.95 ले ले, बहुत थोड़ा सा फर्क रहेगा, लेकिन बहरहाल यही कहा जाएगा कि 98 वाला सेकेंड नंबर पर आया। कहा सलमान भी इस मामले के अंदर एक कदम पीछे, ये इतना पक्का हमारा चाहने वाला। एक तो होता है ना कि इमाम ने हुक्म दिया और उनका शिया उस हुक्म पे अमल करे, ऐसे तो बहुत है, लेकिन दिमाग में भी ख्याल ना आने पाए, जरा सा वसवसा भी पैदा ना होने पाए। वसवसा अपने कंट्रोल में नहीं है, वो शैतान के अख्तियार में, इसीलिए इस्लाम ने वसवसे का गुनाह माफ किया। कहा लेकिन मिकदाद के दिमाग में वसवसा भी नहीं आता। अच्छा चले हदीस पूरी कर दू। कहा कि मौला तो ये सलमान कैसे? कहा सलमान जब हमारी दादी पे सारे मजालिम हुए, सलमान के जहन में एक लम्हे के लिए ख्याल आ गया कि मौला कायनात के हाकिम, इसमें आजम उनके पास है, वो इस जुल्म करने वालों को एक लम्हे में खत्म कर सकते हैं, वो क्यों उन्होंने जवाब नहीं दिया? बस सिर्फ इतना सा ख्याल है, क्यों जवाब नहीं दिया? इमाम के किसी अमल पर क्यों का ख्याल दिल में आना? सोचा नहीं उन्होंने जानबूझ के, खुद ब खुद उनके दिल में आया कि क्यों इमाम ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ इतना सा ख्याल आया तो 0.001 से वो मिकदाद से पीछे हो गए, क्योंकि मिकदाद के दिमाग में इमाम के किसी अमल के बारे में कभी लफ्ज क्यों आया ही। अब इनका एक अगला जुमला जो हमारे आपके लिए बहुत अहम है, लेकिन उससे पहले रुक के एक वाकया सुना दूं। ये वाकया मैंने बहुत सी मजलिसों में पढ़ा है, लेकिन चूंकि अल असर इस्लामिक सेंटर मेलबर्न, यहां पर मुझे मजलिसे पढ़ने का मौका बहुत कम मिलता रहा, या जो थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूं ये इसी कोविड की वजह से पढ़ रहा हूं। अब या तो आप कहिए कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के चले उस एक मुसीबत के नतीजे में मजलिसे हो गए, या आप कहें कि भाई वो कोविड की मुसीबत से तो बड़ी मुसीबत आप तो वजूद हो गया, जो भी आप समझे। तो ये वाकया मैंने आम मजलिसों में बहुत पढ़ा। शहीद दस्ते गैब शिराजी हमारे जमाने के एक बहुत अजीम आलिम है, मुश्तहिद नहीं, मर्जे नहीं है, मुश्तहिद भी शायद ना हो, अगरचे इनको ईरान में मुश्तहिद माना जाता। इमाम खुमैनी इनकी बहुत तारीफ करते हैं। हुआ मुहज़्ज़िबुन नुफूसा वल अख़लाक़, का ये वो आलिम है जो लोगों के नफ्स और अख़लाक़ की तहजीब करता है, सफाई करता है, पाकिजगी पैदा करता है। इमाम खुमैनी के नुमाइंदे बने थे शिराज में, और जब नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद में, तो मस्जिद में कैसेट रिकॉर्डर में बम रखा गया था, वो फटा बम, जिसके नतीजे में ही शहीद हुए। और चूंकि बिल्कुल इनके करीब वो कैसेट रिकॉर्डर था, तो जिसम के टुकड़े भी उड़े, फिर उसको जमा करके दफन किया गया। रात को बेटे के ख्वाब में आए, मेरे जिस्म का एक टुकड़ा फुला खिड़की के पीछे है, उसको भी वहां से लेके आओ। बहुत अजीम आलिम है शहीद दस्ते गैब, उन्होंने ये वाकया अपने हवाले से सुनाया। फरमाया कि जब मेरी जवानी थी, अब देखिए शहीद दस्ते गैब की शहादत को तकरीबन 40 साल हो गए, 40 से भी कुछ ज्यादा, 40। और जिस वक्त उनकी शहादत हुई वो 70 प्लस थे, तो बात कर रहे हैं अपनी जवानी की, तो तकरीबन समझिए कि आज से 90 साल पहले का वाकया होगा। कहा कि नजफ, नजफ में मैं तालीम हासिल कर रहा था। उस वक्त तो नजफ का ही हौजा सबसे बड़ा, सबसे मशहूर हौजा था, शायद कुम बना भी नहीं था उस वक्त। 1341 हिजरा में कुम को अब्दुल करीम हायरी ने बनाया हौजा। तो खैर, जवानी थी, मैं वहां नजफ में पढ़ रहा था और नजफ का बेहतरीन जमाना था, वो गोल्डन पीरियड ऑफ नजफ। मैंने कल भी कहा था कि उलमा के हालात मेरी जबान पे जब आ जाते हैं तो मैं फिर बहक जाता हूं, इस वक्त रोक रहा हूं। तो हम लोग स्टूडेंट, बाकी जो मराजे थे वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, और जो मुस्तहिदीन थे वो अपना दर्स दे रहे हैं, और जो टीचर्स थे, हम जो स्टूडेंट थे, वो जो शाम के वक्त जमा होते थे मौला के रोजे के सहन, नजफ का एक आम तरीका, फजर के बाद दर्स शुरू हो जाते हैं, फिर सब लोग मगरिबैन मौला के रोजे में पढ़ते हैं, घरों में जाके आराम करते हैं। तो मुख्तलिफ इल्मी मसाइल पर डिस्कस होता था। एक दफा डिस्कशन होने लगा कि रिवायत में यह है कि इमाम जमाना की फौज में 313 सिपाही होंगे। तो 313 तो बहुत ही छोटा अंदाज है, तो आज नजफ के अंदर मुश्तहदीन 313 होंगे, तो ये 313 की जो फौज है दुनिया भर के शिया है, दुनिया भर में शिया फैले हुए 300, बस इतने से तो ये बाकी जो नजफ में मुश्तहदीन 313 होंगे, तो बाकी जो पूरा नजफ भरा हुआ है स्टूडेंट से 40,000, और फिर पूरा इराक मोमिनीन, और फिर पूरा ईरान मोमिनीन, और इंडिया, उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं बना था, इंडो पाक, इतने सारे करोड़ों मोमिनीन सिर्फ 313 इमाम को मिलेंगे। तो आखिर समझ में नहीं आती हदीस का इसका मतलब क्या है। 313 का फिगर बहुत मशहूर भी। तो कहा कि बस सब आपस में डिस्कशन होने लगा, तो हम स्टूडेंट्स ने, अब ये मराजी और मुश्तहिदीन इस मसले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी, तो हमने कहा कि इसका सलूशन निकालना चाहिए। अब सलूशन कहां से निकले, किताबों में तो कोई तफसील नहीं थी। तो आखिर हमारे एतबार से नजफ के जो सबसे मुकद्दस आलिम थे, मर्जे नहीं, एक तकद्दस, एक तकवा, एक पायटी, एक कैरेक्टर, एक अलग चीज होती, ये थोड़ा बहुत जो इल्म इरफान को जानते हैं, अब जैसे हमारे यहां मराजे का एक सिलसिला है, उसके पैरेलल आगा जवाद, मलकी तबरेजी, मिर्जा अली काजी, सईद अहमद करबलाई, सईद हाशिम हद्दाद, एक ही जमाने के, लेकिन दो दो अलग पैरेलल लाइनें चलती। वक्त नहीं है, बातें बहुत मुझे तो दिलचस्प लगती हैं, बाकी लोगों की बात नहीं करता। तो उनसे हमने कॉन्टेक्ट किया, मसलन शॉर्ट, इन शॉर्ट, आगा तकीब एजेद जैसा कोई शख्स, अब आगा तकीब एजेद तो मर्जे भी थे, लेकिन जब वो मर्जे नहीं बने, इतना कोई माहिर और अखलाकियात और तकवे का पाबंद, उनसे जाके कहा कि ये एक मसला हमें पेश आ रहा, आप इसका जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि फिर जो एक अमल है, मैं वो अमल करता हूं, एक अमल है ना कि जिसके बाद खुद बराह रास्त इमाम जमाना से मुलाकात हो जाती है, मैं वो अमल करूंगा और इमाम जमाना से इस मसले का जवाब ले लूंगा। आप में से जिन लोगों ने कभी बहरीन में वक्त गुजारा, बहरीन में सिर्फ दो जियारतें हमारी हैं, बहरीन शियत का बहुत बड़ा मरकज रहा, अखबारियत का भी बहुत बड़ा मरकज रहा, लेकिन फिलहाल मैं अखबारियत को छेड़ना नहीं चाहता। दो अहम, एक तो खैर सासा इब्ने सोहान, जिनकी मस्जिद मस्जिद सहला के पीछे कूफे में है, मौला के बहुत ही करीबी सहाबी, ऐसे अजीम सहाबी कि जब मौला को दफन किया तो इमाम हसन ने कहा सासा मेरे बाबा की पहली मजलिस तुम पढ़ोगे, खुद इमाम हसन ने भी नहीं पढ़ी मजलिस, उनसे पढ़वाई। एक उनका रोजा है और एक है शेख रुम्मानी मोहम्मद इब्ने ईसा, नाम तो ये है, उनका नाम है शेख रुम्मानी। रुम्मान अरबी में कहते हैं अनार को, पॉमग्रेनेट, वो अनार वाले कहलाते हैं, क्योंकि वो जो एक अनार का फ्रॉड किया था एक दुश्मन अहले बैत ने, और उस पर बास दुश्मना ने अहले बैत के नाम नेचुरल तरीके से नजर आए, और फिर इमाम ने आके पूरा मसला बताया, बहुत मशहूर वाक़ है, पढ़ा भी जाता, मेरा भी दिल चाह रहा था कि सवाब के खातिर उसे आज पढ़ूं, क्योंकि उसमें दुआ का पहलू है, शबे जुमा दुआ भी, लेकिन अब वक्त नहीं रहा। तो खुलासा उसका भी वही है, इसका भी यही, कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम पेश आ जाए जिसका सलूशन कहीं ना मिल रहा हो तो 3 दिन रोजे रखो, यही पहली दूसरी तीसरी मुहर्रम का रोजा भी उसी की एक मिसाल है, और तीनों रातें इबादत करो जाग के। फिर इस दौरान किसी वक्त इन 3 में से किसी दिन इमाम तुम्हें आके तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन देंगे। अब सिर्फ बात को समझाने के लिए कह रहा हूं कि आगे तकिए बहजत के लेवल का इल्म अखलाक का माहिर, उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा मसाला बहुत बड़ा और तुम्हारी वजह से मेरे जहन में भी ये सवाल पैदा हुआ, हम ये अमल करते हैं। उन्होंने अमल शुरू किया। अब ये स्टूडेंट रोजाना नजफ में और कुम में भी, हमारी जो एजुकेशन है ना वो बहुत जल्दी स्टार्ट होती है फजर के फौरन बाद। अब ये स्टूडेंट रोजाना नमाज शब के वक्त उठते हैं ना, तो नमाज शब पढ़ के फौरन इनके घर पे आते हैं ताकि पूरी रात इबादत, अब खत्म, दिन को रोजा रखा है रात को इबादत की, अब ये खत्म हुई है रात, नौ किया, कुछ मैसेज, कोई पैगाम, कोई सोल्यूशन, कुछ नहीं। उन आलिम ने जवाब दिया कुछ नहीं, आज भी रोजा रखूंगा, आज रात भी इबादत करूंगा, दूसरी रात फजर के करीब फिर नॉकिंग, कोई मसले के जवाब का, आज भी रोजा रखा, सारी रात इबादत की, उसकी कुछ मखसूस दुआएं भी। और जो जिस किताब का मैंने कल हवाला दिया था दारुस्सलाम फीमा या ताल्लुक फिर रोया वल मनाम, उसमें वो सारे आमाल है कि अगर कोई इमाम जमाना के ख्वाब में जियारत करना चाहे तो क्या आमाल है। नहीं जवाब दिया, दूसरी रात भी खत्म हो गई कि नहीं कोई जवाब नहीं मिला, आज तीसरा दिन है, आज भी रोजा रखूंगा और आज भी मैं पूरी रात इबादत करूंगा। तीसरी रात नमाज इशा पढ़ के ये स्टूडेंट आए, अब फजर की अजान में अभी कुछ मिनट बाकी हैं, नौक किए दरवाजे को। एक जुमला ऐसा है जो मैं खुल के कहना भी नहीं चाहता हूं और कहना भी जरूरी, दरवाजे को नौक किया, आज जरा दरवाजा खुलने में देर, और उसके बाद दरवाजा खोला बाहर निकल के आए। स्टूडेंट ने पूछा खैरियत तो है, जरा देर हो गई, कहा कि मुझ पर गुसल वाजिब हो गया था और फजर का वक्त करीब है, मैं गुसल कर रहा था, ये कहने की क्या जरूरत है, इसलिए के वाकये का उससे ताल्लुक। कहा कि कोई इमाम की तरफ से जवाब आया, कहा कि खुद इमाम तो मेरे कांटेक्ट में नहीं आए, लेकिन समझो ये जवाब इमाम की तरफ से आ गया। क्या जवाब है, कहा कि पूरी रात मैंने इबादत की, फजर से कुछ पहले, अभी थोड़ी देर पहले, इतनी गहरी नींद आ रही थी, इतनी गहरी नींद, 3 रातों की इबादत है, आज की आखिरी अहम तरीन रात है, ये रात कहीं वेस्ट ना हो जाए, मैं जागना चाहता हूं लेकिन जाग ही नहीं पा रहा हूं। वो आलिम कह रहा है कि जो इल्म अखलाक का माहिर है, जो पूरी पूरी रात जागते ही हैं, जिनकी आदत है, लेकिन कुदरती नींद यानी ये अपने जिस्म की नींद नहीं थी, ये इमाम की तरफ से थी, तो आखिर मैं कितनी कोशिश करता रहा, मेरी आंख लग गई, ख्वाब में मैंने देखा ये शहीद दस्ते गैब शिराजी उस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि 313 इमाम को कौन से चाहिए, और बाकी जितने सारे लोग हैं क्या ये इमाम के स्टैंडर्ड सब बेकार हैं। कहा कि मैंने देखा कि मैं सो गया, नहीं देखा नहीं है, मैं सो गया, ख्वाब में मैंने देखा कि मैं पानी के जहाज पे जा रहा हूं, जब का वाकया उस वक्त तक राइट बरादरान ने हवाई जहाज तो ईजाद ही नहीं किया, तो ज्यादातर ट्रेवलिंग होती थी समंदर के रास्ते, सो गए। अचानक मैंने देखा कि चलते चलते मेरा जहाज वो एक आइलैंड पे जाके रुका जजीरे पर, और मैं उतरा, और उतरा तो मुबारक 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 सलामत आ गए ईद हो गई, ये मोटे मोटे फूलों के हार मेरे गले में पहनाए। पहले मशहूर था आज से 50 साल पहले कि अमेरिका की जो आखिरी रियासत थी जो सबसे आखिर में ज्वाइन किया हवाई, वहां कोई जाता था तो इसी तरह से वहां की लड़कियां आके उसको हार पहनाती थी, वल्लाह आलम मैं कहां फजूलियात में रच गया, मुझे तो मोटे मोटे वो फूलों के हार पहनाएगा, अब मुबारक मुबारक भाई क्या बात क्या चीज क्या मुबारक। कहा कि हमारे बादशाह का इंतकाल हो गया रिसेंटली, और हमारा दस्तूर यह है कि भाई हमारे यहां उसका बेटा है तो वो बादशाह बने, बेटा कोई नहीं है तो किसको बादशाह बनाए, आपस में जंगे ना हो, जैसे मुगल खानदान में भाई भाई की गर्दन उड़ाता, तो एक दस्तूर कि अगर बेटी है बादशाह की और बेटा कोई नहीं है तो जो पहला मुसाफिर आएगा इस जजीरे में वो बादशाह बनेगा, तो आप सबसे पहले हैं तो मुबारक हो, आप हमारे बादशाह भी हैं, और फिर हम उसकी शादी उससे उसी लड़की से कराते हैं, तो अब कह रहे कि तो डबल खुशी मुझे मिली, बैठे बैठे बादशाहत मिल गई और साथ में फिर शहजादी मिल गई, शहजादी तो बहरहाल शहजादी शहजादी होती है, कैसी ही क्यों ना खूबसूरत तो होती ही होती होगी, तो अब ये नजफ के मुकद्दस तरीन आलिम आगा बहजत के लेवल के वो ये बता रहे हैं कि लोग इस्तकबाल करके ले चले वो शाही महल बहुत खूबसूरत, और फिर निकाह भी हो गया। निकाह होने के बाद मुझे पहुंचाया गया दुल्हन के कमरे में। अब ये कोविड की वजह से मोमिनीन फिजिकल तो यहां नहीं आ रहे हैं, बस मैं मीडिया टीम है, और जहां तक मैं देख रहा हूं ये सारी मीडिया टीम शादीशुदा है ऑलरेडी, उतने ही लोग हैं ना जितने गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं। तो इनमें से हरेक को पता होगा कि अब ये शादी हुई है, शहजादी से शादी हुई है, अनएक्सपेक्टेड खुशी मिली है। अब जो कमरे में दाखिल हुए तो दिल में दूल्हा के क्या गुजर रही होती है उस वक्त, और पुराने जमाने का दूल्हा आज का होता तो यूट्यूब पे सब देख चुका होता, फेसबुक होता तो सारी बातें हो चुकी होती। अब वो जा रहा दिल कि देखो तो सही मेरी दुल्हन कैसी। जैसे मैंने दो कदम आगे बढ़ाए दरवाजे पे नॉकिंग की आवाज हुई। बाज़ाकात घर वाले तंग किया करते हैं ऐसे मौके पे दूल्हा को, तो खैर अब ये घबरा गए कि दरवाजे पे नॉकिंग क्यों। बाबा ने बुलंद पूछा, भाई इस वक्त क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहा, कौन? कहा कि हम इमाम जमाना के गुलाम है, इमाम जाहिर हो गए, तुम्हें फौरन बुलाया। अब वो दुल्हन घूंघट उठाना, घूंघट कहा अच्छा अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, कितना फासला होगा उस कमरे में, अभी आ रहा हूं, आगे बढ़ो। दो कदम बढ़ा फिर नॉकिंग, कौन है? वही बोलता है कि मैं इमाम का गुलाम हूं, इमाम आ गए, तुम्हें बुलाया है। मैंने कहा बस वो मैं पहुंच गया बेड के करीब, एक सेकंड के अंदर वो घूंघट उठाता हूं और आता हूं। आगे बढ़ा, बिल्कुल करीब पहुंचा, मेरा हाथ बढ़ रहा है कि आवाज आई, इमाम कह रहे हैं फौरन आ जाओ। मेरे दिल में ख्याल आया कि या तो जिंदगी भर इमाम नहीं है, और आना था तो ऐसे ही मौके पर आए कि बस दुल्हन का घूंघट उठने वाला। भाई ये दिल में ख्याल आया, मेरी आंख खुल गई, मेरे ऊपर गुस्ल वाजिब था, मैं समझ गया इमाम का पैगाम क्या, कि वो 313 जो मुझे चाहिए वो ऐसे होंगे जिनके दिल और दिमाग इस तरह से मेरे ताबे होंगे और मेरा हुक्म मानने वाले होंगे कि वसवसा और शक तक उनके दिल में नहीं आएगा कि आखिर इमाम ने इस वक्त क्यों बुलाया। ये नहीं है कि बाकी सारे लोग इमाम की फौज में शामिल नहीं होंगे, सब शामिल होंगे, हम आप सब इमाम की फौज में शामिल होंगे, लेकिन वो 313। और अगर कोई पूछे कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि किसी के दिमाग में भी हल्का सा वसवसा ना आए, तो मिकदाद इब्ने अस्वद गुजर चुके। खुद इमाम मासूम ने कहा कि मिकदाद इस मामले में सलमान से भी एक कदम आगे थे, कि सलमान के दिल में भी कोई खराबी नहीं आई, सिर्फ एक सवाल आया कि शहजादी के घर का दरवाजा जल गया, मौला ताकत रखने के बाद क्यों खामोश। मिकदाद के दिल में यह वसवसा तक नहीं आया, जो इमाम कर रहे वो सही। इतना अपने आप पर, अपने ख्यालात पर ऐसा कंट्रोल करना, ये हमारे और आपकी ताकत से बाहर है, तो अल्लाह ने हमारी ये जिम्मेदारी भी नहीं रखी। लेकिन मैं बता रहा हूं मिकदाद, तो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मिकदाद के दो बहुत अहम जुमले जो आपके काम आएंगे इमाम जमाना के हवाले से। लेकिन अब आज वक्त नहीं रहा तो एक मुख्तसर बात करूं, और वो ये कि इमाम जमाना के हवाले से ऐसे चाहिए तो ये 313 इमाम को ऐसे जो चाहिए हैं, तो इनमें और बाकी साथियों में क्या फर्क है? फर्क यह है कि ये 313 वो लोग हैं कि जब इमाम जमाना दुनिया में अपनी हुकूमत कायम करेंगे, तो इस वक्त कितने 200 and something ममालिक हैं, यूएनओ के मेंबर, और कुछ तो यूएनओ के मेंबर भी नहीं, चले एस्टिमेटली 210 ममालिक हैं। उनमें इतने छोटे भी हैं कि जो हमारी और आपकी जेब में आ जाए, ओ इंडिया और चीन और रूस की तरह से इतने बड़े बड़े मुल्क भी हैं, एरिया वाइज बात कर रहा हूं, और ऑस्ट्रेलिया। इमाम आके सबको बराबर कर देंगे, पूरी दुनिया को एक हुकूमत बनाएंगे और 313 इक्वल स्टेट्स में तकसीम करेंगे, आबादी के एतबार से भी और एरिया के एतबार से, और हर जगह पर अब ये जो 313 इमाम को चाहिए इनमें से हर एक को हर मुल्क का गवर्नर बनाया जाएगा। तो दुनिया में जहूर इमाम के बाद 313 स्टेट्स बनेंगी, मुल्क तो एक ही होगा वो इमाम का, और ये 313 गवर्नर बनेंगे। और ये गवर्नर वो होंगे कि जब इमाम उस इलाके को पहले तो फतह करेंगे ना, तो उसी गवर्नर की कयादत में फौज भेजी जाएगी, वो इलाका फतह करेगा, फिर उसी इलाके के अंदर वो गवर्नर बन जाएगा या इमाम का नायब बनेगा। और जब एक एक करके बाकी सारे मासूमीन दुनिया में आएंगे तो सब एक जगह नहीं रहेंगे कि मालूम है कि सारे मासूमीन मदीने में, या सारे मासूमीन करबला में, या सारे मासूमीन कूफे में, मासूमीन भी दुनिया के अंदर फैल जाएंगे, और एक मासूम एक इलाके में आएगा, दूसरा दूसरे इलाके में आएगा। अब मासूम जो है उनमें से तीन को छोड़ के रसूलुल्लाह, मौला अली, शहजादी फातिमा, बाकी 11 जो है वो इन 313 को अपने दरमियान तकसीम कर लेंगे। अब एक सवाल यहां पे ये है कि वो कौन सा इमाम किस इलाके में जाएगा। भाई हमारी ख्वाहिश तो यह है कि मसलन हम पाकिस्तान के हैं तो मसलन दिल चाहता है कि आका हुसैन हमारे यहां है। कहते नहीं, अब ये रिवायत में नहीं, ये रिवायत में नहीं, वो तो अल्लाह फैसला करेगा। लेकिन उलमा की तहकीक ये कि इमाम जितने हैं ना सबका ताल्लुक एक जगह से, मक्के और मदीने से, मक्के से है फिर मदीना, माए तो अलग अलग इलाकों से आई, कोई मदीने की थी शहजादी कौन है, तो कोई ईरान की थी, तो कोई मसलन स्पेन की थी, मुख्तलिफ इलाकों से, जहां जहां से जिस मासूम की मां का ताल्लुक है वह मासूम अपनी मां के शहर में इलाके में जाके रहेगा। अब मोस्ट प्रोबेबली ईरान, इंडिया और पाकिस्तान मिला के एक इलाका बनेगा। खैर ये बातें इतनी कोई जरूरत नहीं थी आज के दिन। इमाम जमाना जब हुकूमत कायम करेंगे तो इस हुकूमत का नाम क्या होगा? गदीरी हुकूमत। जो पैगंबर ने कहा था कि मैंने अली को तुम्हारा हुक्मरान बनाया, नहीं माना मुसलमानों ने यह ऐलान, अली के लिए नहीं, अली से लेके 11वें इमाम तक किसी इमाम के लिए नहीं, 12वां इमाम गदीर के इस ऐलान को पूरा करेगा, मुकम्मल करेगा, और सही मानों में विलायत अली आपको नजर आएगी इमाम जमाना की हुकूमत में। तो इमाम जमाना विलायत अली के ऐलान पर अमल करके दिखाएंगे। मगर अभी जो बात मैंने कही कि मिक्दाद जैसा तो सलमान जब नहीं है तो हम और आप क्या होंगे, लेकिन कम से कम मोमिन को मालिक अश्तर और कैस की तरह का होना चाहिए। यह विलायत अली की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। किसे कहते हैं विलायत अली? शराब पिए जाओ, नारे हजरी लगा लो, तुम अली की विलायत के कायल हो, नहीं तुम अली की मोहब्बत वाले हो। तुम्हारी मोहब्बत में हम शक नहीं कर रहे, तुम मुहिब अली हो, कोई शक नहीं। नमाजें कजा करो और अली का नाम लो, ये विलायत अली है, नहीं तुम मुहिब अली, तुम्हारी मोहब्बत में हमें कोई शक नहीं। हम क्या चीज, हमारी हैसियत क्या है कि हम क्राइटेरिया बनाए किसी के लिए? मासूमीन कहते हैं तुम्हारी औरतें मिस गैदरिंग में जाके बैठे और वहां पे बच्चे की बर्थडे पार्टी में म्यूजिक चल रही है और डांस भी हो रहा है, इसी में मेलबर्न की बात कर रहा हूं। यहां तो एक तरीका मेलबर्न के मोमिनीन ने बना लिया है, एक अच्छा तरीका है, एक तरह से अच्छा भी है। शादियां इस कसरत के साथ होती है ना, हो रही है अब, और कोविड की वजह से तो मजबूरन लोग यहीं शादियां कर रहे हैं, मिक्स गैदरिंग भी है, डांस भी है, म्यूजिक भी है। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको ठीक करने का, जितने उलमा उनमें से किसी को ना बुलाओ, बुलाओ नहीं, तो सारी मोहब्बतें, सारी दोस्तियां, सारा खुलूस, वो हाथ मिलाना और गले मिलना और अवारी और सदके होना, वो वैसे मस्जिद इमामबाड़े में तो ठीक है, बुलाओ नहीं, और बुलाओगे तो मसाला हो जाएगा। क्योंकि एक अमामे की इससे बड़ी कोई तौहीन नहीं हो सकती है कि उनको उस मिस गैदरिंग में ले जाके बिठाया जाए जहां पे बेहिजाब औरतें, या तो ईरान की तरह सब हिजाब वाली जो मेकअप तक ना करें। जब तौहीन है सबसे बड़ी किसी आलिम और इमामे की, वो तौहीन नहीं है जिसे लोग समझ रहे हैं। तौहीन ये है जो वो लोग कर रहे हैं कि जो बड़ी अकीदत के साथ उलमा से हाथ मिलाते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनको बोसा देते हैं, बस न चले तो उनके पैरों में गिर पड़ते हैं। तो अब ये के लोगों ने आसान सा हल निकाला, ये जबानी बातें कर लेंगे लेकिन अपने घर की किसी तकरीब में मत बुलाओ, वो आलिम चल जाएगा जो बहुत ही खामोश रहता, बोलता ही नहीं। क्या कहना फला साहब के, न किसी के लेने में न किसी के देने में, ये आप खसूसियत बता रहे हैं कि उनकी बुराई कर रहे हैं, या आप उनके फजाइल बता रहे हैं कि उनकी तौहीन कर रहे हैं? करबला का तो जिहाद इसी बात का नाम है कि तुम्हें किसी के लेने में भी इन्वॉल्व होना और किसी के देने में भी इन्वॉल्व होना। दीन का मजाक उड़ाया जाए, वाजिबात को पामाल किया जाए, हराम सीना ठोके किए जाए, और फिर अगर कोई बोल दे वो बड़ा बदअखलाक, वो बहुत ही रूढ़ है, और जो बिल्कुल आपके साथ आके बैठे जाए, हदीसे किसा भी पढ़ दे, ये है खुश अखलाक। ऐसा अखलाक इस्लाम ने नहीं सिखाया है। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, टाइम मेरे पास नहीं है। कैस मालिक अश्तर, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा कि कैस का नाम मोमिनीन कराम की 99% आबादी ने नहीं सुना होगा। और क्या अजीम शख्सियत थी, मालिक अश्तर की अजमत में शक नहीं है, लेकिन कैस कम नहीं है, बहुत अजीम इनका रुतबा कैस का, इन्होंने बताया। अच्छा, अब इनका वाकया तो पढ़ूंगा तो वक्त निकल जाएगा, आ जाइए मालिक अश्तर के उस जुमले पे जो हर मोमिन जानता है, और यहीं पे मेरी बात खत्म। अगर हमें और आपको इख्तियार मिल जाए, ताकत भी हमारे पास हो, तलवार भी हमारे पास हो, और हमारी तलवार यजीद की गर्दन पे पहुंच जाए, हम मानेंगे उस वक्त किसी का ये हुक्म? मजबूर हो तो अलग बात, जब ताकत भी है, इख्तियार भी है, कोई रोकने वाला भी नहीं, और यजीद कोई हमारा दुश्मन नहीं, आले मोहम्मद के दुश्मन, उसकी गर्दन पे हमारी तलवार पहुंच जाए और कहा जाए रुक जाओ, आगे तुम्हारा हाथ जरा सा हरकत ना करे। यजीद छोटा है, यजीद का बाप उससे बड़ा मुजरिम। मालिक अश्तर ने सिफीन की लड़ाई में मुआविया के खेमे तक रसाई हासिल कर ली, सारी फौज भाग गई हाकिम शाम वाली। उस खेमे को, उसकी जो रस्सियां उसको काट रहे हैं, तीन रस्सियों में से दो कट गई है, तीसरी रस्सी है, ये कटेगी, खेमा गिरेगा, अंदर सिर्फ हाकिम शाम है और घबरा के निकलेगा। मैदान जंग में ये स्लो स्लो मूवमेंट नहीं होता है, सेकेंडों में गर्दन उड़ जाएगी। अली का इतना बड़ा दुश्मन, और अली का हुक्म आ गया, मालिक अश्तर जहां पे हो वहीं रुक जाओ, तलवार को रोक लो, खबरदार तलवार आगे ना बढ़े। हम हाथ जोड़ के कहते, मौला अल्लाह हमें जहन्नम में डाले, हम जहन्नम में जलने को तैयार है, आपके दुश्मन को माफ करने को तैयार नहीं। जबकि मालिक के पास ताकत है, ये तो हमारी आपकी तरह नहीं कि मजबूर, वो ताकत भी रखते हैं, इस वक्त वो हुक्मरान के डिप्टी भी हैं, और सामने दुश्मन की फौज भाग गई है, खाली एक आदमी रह गया, सेकंड में उसकी गर्दन उड़ेगी, सेकंड। लेकिन मुआविया का कत्ल करना मालिक अश्तर को मकसूद नहीं है, इमाम का हुक्म मानना मालिक अश्तर की नियत। बहुत देखिए, मैं कह रहा हूं बहुत ये मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं है कि ऐसा दुश्मन आपके सामने हो। ये है विलायत, इसको कहते हैं विलायत। दाढ़ी मुंडवा के घूमो और कहो कि मैं अली को वली मानता हूं, नमाजें कदा करो मैं अली को वली मानता हूं, खुम्स का पैसा खा जाओ मैं अली को वली मानता हूं, लोगों का हक जाय करो मैं अली को वली मानता हूं, वालिदैन की तौहीन करो मैं अली को वली मानता हूं, ये नहीं है, ये है विलायत। जो इमाम ने कहा, और इसकी मजीद तशरीह में कल करूंगा, और ये याद रखिएगा, गदीर खुम को मुकम्मल करने वाले का नाम है इमाम जमाना, मगर जो गदीर खुम का ऐलान था ना, इस ऐलान पर हम अमल कैसे करें? एक है, सुनिए, एक है मकसद, वो है गदीर खुम। मकसद क्या है? पूरी दुनिया में अल्लाह का निजाम जो सिर्फ विलायत अली ला सकती, और किसी आदमी में इतनी ताकत नहीं। नंबर दो है मुबाहिला, तरतीब देखिए तारीख में, मुबाहिला किसे कहते हैं? जो तरीका बताती कि गदीर के ऐलान पे अमल का तरीका क्या है, ये मुबाहिला बताता है। करबला क्या है? करबला बताती है कि फिर इसके लिए कुर्बानियां कितनी देना होती है, और नौ रबीउल अव्वल ये बताती है कि नतीजे और इख्तिताम में अल्लाह की मदद आती है और तुम कुर्बानियां दे के कामयाब होते हो। ये चार वाकयात एक तरतीब से, गदीर मिशन है, हमें एक टास्क दिया गया, और मुबाहिला ये तरीका बता रहा। क्या मतलब तरीके से? तरीके का मतलब ये कि मुबाहिला ने बताया कि गदीर के ऐलान पे अमल नहीं हो सकता जब तक के मर्द भी हिस्सा ना ले, औरतें भी हिस्सा ना ले, बच्चे भी हिस्सा ना ले, जवान भी हिस्सा ना ले, बूढ़े भी हिस्सा ना ले। मुबाहिला इसी का नाम तो है ना। मुबाहिले के मैदान में जो रसूल लश्कर लेके चले, उसमें मर्द भी हैं, उसमें औरतें भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बूढ़े यानी रसूल जैसे बूढ़े भी हैं, इसमें अली जैसे जवान भी, तब कामयाबी मिलती। जिस रसूल को मक्के के काफिर रिसालत के ऐलान से पहले सादिक कहते हैं, उसकी सच्चाई में क्या शक? लेकिन यहां जो सादिकीन का इस वक्त नजरान ईसाइयों से मुकाबला है, तो उसके लिए सबको हिस्सा लेना, चुनाच बहुत अहम ये पैगाम है, अकेला मैं चाहूंगा कि मेरे घर की शादी भी ठीक हो जाए और मेरे घर का माहौल भी ठीक हो जाए और कोई मेरा साथ ना दे तो नहीं हो सकता। ये मखदाद का एक और जुमला था, तड़प तड़प के तलवार निकालते थे और कहते थे कि मुझे अगर 30 आदमी भी मिल जाए तो देखना किस तरह से मैं तख्त खिलाफत पलट के उस जालिम की गर्दन उड़ा दूं। साथी चाहिए, ये मुबाहिला ने बताया, मुबाहिला ने बताया तरीका क्या है, और करबला ने 2 मुहर्रम को इसे साबित किया, 28 रजब और 2 मुहर्रम। ये करबला के 2 ऐसे सिरे जो बता रहे हैं कि दीन के काम करने का तरीका क्या है विलायत का। चुनांचे जब हुसैन मदीने से निकले 28 रजब को, यजीद अकेला हुसैन का दुश्मन है, उसे बाकी किसी से गरज नहीं है, लेकिन हुसैन अकेले नहीं निकले, अपने साथ जवानों को भी लेके गए, अपने साथ बच्चों को भी लेके गए, हत्ता अगर अली असगर अभी सिर्फ 2 हफ्ते के हैं तो वो भी जाएंगे, और अपने साथ औरतों को भी लेके गए। और ऐसा भी नहीं कि कोई कह दे कि आका हुसैन जा रहे थे, सरपरस वही हैं तो इनको किस पे छोड़ के जाते, इस मजबूरी में ले गए, नहीं, ऐलान करके ले गए। जब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने आकर कहा था कि मौला अच्छा आप चले जाइए, औरतों को क्यों ले जा रहे, आका का जवाब क्या था, ऐ इब्ने अब्बास जो जिहाद में करने जा रहा उसमें मेरी बहन ज़ैनब और मेरी बेटियों का भी हिस्सा। और जब अली असगर ने 28 रजब को सुगरा की गोद छोड़ने से इंकार कर दिया था और ज़ैनब ने कहा था भैया क्या किया जाए, असगर नहीं मान रहा, हुसैन ने आके एक ही जुमला कहा था, असगर बेटा मैं तुझे तेरी बहन से अलग ना करता, लेकिन क्या करूं जो जिहाद में करबला में करने जा रहा उसमें मुझे तेरी जरूरत। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये खानदान का सरबरा कहीं जा रहा तो सोचता है कि मेरे बाद मेरे घर वाले अकेले हैं, कौन ख्याल करेगा, इनको सिर्फ इसलिए ले जा रहा, नहीं, कहा कि जिहाद है करबला में, ज़ैनब का भी हिस्सा है, सकीना का भी हिस्सा है, असगर का भी हिस्सा, ये एक तरफ, और दूसरी जाने बाद उलमा 2 मुहर्रम की शब में मसायब पढ़ते हैं और मैं अमूमन 3 मुहर्रम की शब में मसायब पढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि हुसैन 2 मुहर्रम को असर के करीब करबला पहुंचे, तो एक रात पहले तो बहुत पुरानी बात होती, ये बिल्कुल अभी 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 पहुंचे। अब देखिए वहां भी आपके सामने यही मंजर आएगा, हुसैन काफिला मदीने से चला, मक्का पहुंचा, मक्के से चला। देखिए ये बहुत बड़ा हुसैन का इम्तिहान है, इसकी तरफ हमारी और आपकी तवज्जो नहीं होती है और हो भी नहीं सकती है, इसकी जानत तवज्जो किसको किसकी होगी, मेरी होगी, हमारे बरादर मोहतरम अदनान कलीम साहब की होगी, और हर उस आदमी की होगी जो हज के जमाने में सरजमीन हरम में है। जब हज करीब आता है ना तो एक ऐसा माहौल बन जाता है मक्के का, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इहराम पहने हुए हर तरफ से मक्के में जितनी सड़कें हैं हाजियों के काफिलों में काफिले आ रहे हैं, खास तौर पर 80s और 90s में जब सऊदी हुकूमत ने लोकल्स पर हज की पाबंदी भी नहीं लगाई, एक अजीब माहौल बनता है, ऐसा हज का एटमोस्फियर होता है हज से 1-2 दिन पहले 7th और 8th ज़िलहिज को, कि जिसका दिल हज का नहीं भी चाह रहा होता है वो भी हज कर लेता। मैं जानता हूं कितने काफिले में लेके गया, मालूम हुआ कि हज पे हम निकल रहे हैं, यानी निकलने से मतलब मक्के में हैं और अब जा रहे हैं अगली मंजिल की जानिब, बेटा मिलने आया बाप से या कोई रिश्तेदार कि भाई ये जा रहे हैं 5 दिन के लिए मिलो, वहां पहुंचा उसने काफिले का माहौल देखा, उसने मक्के का माहौल देखा, उसी वक्त फैसला किया कि मैं भी इस साल हज करता हूं, जो हज नहीं करना चाह रहा उसकी भी नियत हो जाती है। हुसैन तो 25 या 40 हज कर चुके हैं, सारी जिंदगी हज करने वाला। लोग मुझसे अक्सर कहते हैं, ये जुमला मैं अपनी बढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मेरी सिर्फ एक ये बात हर शख्स जानता कि मौलाना आपने इतने सालों से हज किया, ये 2 साल से आप हज पे नहीं जा सके, क्या आप पे गुजरती होगी। मैंने कहा इसी से तो मुझे अंदाजा होता है कि क्या गुजर रही होगी मेरे आका हुसैन पर, सिर्फ 1 दिन पहले 9th ज़िलहिज को हज होता है, 8th ज़िलहिज को हुसैन जो हज का इहराम भी पहन चुके हैं, हज की तैयारी भी कर चुके हैं और अपने हज को منسوخ کر دیتے ہیں. احرام اتارنے کے لیے پھر عمرہ کرنا ہوتا ہے, عمرہ کر کے احرام اتارتے ہیں. لیکن اتنا دکھ تھا حج چھوڑنے کا اور مکہ چھوڑنے کا کہ جب حسین کا قافلہ مکہ سے چلا تو جب تک یہ سواری آگے بڑھتی گئی, مکہ پیالہ نما شہر ہے, چاروں طرف پہاڑ ہیں, بیچ میں خانہ کعبہ بالکل نشیب میں ہے, تو سواری آگے جب بڑھ رہی ہے, بلندی پہ جا رہی ہے, پھر پہاڑ سے اترے گی, جب تک کعبے کی جھلک نظر آتی رہی حسین نے آگے نہیں دیکھا, مڑ مڑ کے کعبے ہی کو دیکھتے رہے. اور پھر یہ قافلہ جب مکے سے کربلا چلا تو راستے میں تین چار واقعات پیش آئے. مسلم ابن عقیل کا آخری سلام دار الامارا کی چھت سے تھا, حسین نے وصول کیا اور جواب سلام دیا. آگے بڑھے تو منزل آئی کہ حر نے حسین کی فوج کو روک کے راستہ بدلوایا, اور آگے بڑھے تو منزل آئی کہ عباس علمدار نے کہا مولا کئی دنوں کے بعد آج کوفے کا راستہ کھلا اور کوفے سے مسافر نظر آ رہے, اتنی اجازت دیجئے ان سے اپنے بھائی مسلم کی حالت پوچھ لوں. اور کوفے کے مسافروں نے کہا تین دن ہو گئے تھے مسلم کا کٹا سر دار العمارہ پر لٹک رہا تھا اور بے سر کا لاشا کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. اور قافلہ آگے بڑھ رہا, مصائب ایک کے بعد دوسرے پیش آتے جا رہے اور قافلہ آگے بڑھ رہا, یہاں تک کہ دو محرم کی تاریخ آئی اور عصر کا وقت ہے. ابھی مغرب تک تو قافلہ چلے گا نا, لیکن عصر کا وقت ہے. ایک مرتبہ حسین کی سواری کے جانور نے ٹھوکر کھائی اور ذوالجناح وہیں پہ رک گیا. یہ ذوالجناح, میں نے مجلس میں یہ چند نام لیے تھے, مقداد کا نام, قیس کا نام, مالک اشتر کا نام, جو امام کے آگ کے اشارے پہ عمل کرتے تھے, ان سے بڑھ کے ذوالجناح ہے. حسین کے ادنا سے اشارے کو سمجھنے والا, لیکن آج وہ ذوالجناح رک گیا. حسین نے بہت کوشش کی, ایڑ پہ ایڑ لگائی, لیکن حسین کا ہر حکم ماننے والا آج حسین کے نانا کے حکم سے مجبور نظر آ رہا. آج جب آپ کربلا جاتے ہیں اور اللہ آپ کو بار بار لے جائے, بار بار لے جائے, اور کووڈ کا یہ مسئلہ اس طرح ختم ہو کہ آسٹریلیا کے مومنین بھی کربلا پہنچے, دنیا بھر کے زائرین پہنچ رہے ہیں, وہ کووڈ ہو کہ کورونا ہو, کربلا اسی شان و شوکت کے ساتھ ہے, ہم اور آپ بھی پہنچے ہیں. تو جب آپ کربلا مسجد امام زمانہ پر جائیں گے, جہاں دریائے فرات کا ایک حصہ بتایا جاتا ہے, باغ امام جعفر صادق کی جانب جانے کا راستہ وہی تو وہ جگہ تھی, وہ باغ امام صادق کربلا آنے کا راستہ, حسین اسی راستے سے آئی تھی. اور جہاں پہ آج مقام امام زمانہ ہے وہی پہ حسین کی سواری کے جانور نے ٹھوکر کھائی اور ایک مرتبہ رک گیا. حسین تو امام ہے نا, جانتے ہیں. عباس حیران ہو گئے, کہا کہ مولا یہ ذوالجناح یا مرتجز, اس نے آج تک کبھی آپ کے اشارے کے خلاف ورزی نہیں کی, پتہ نہیں کیا بات ہے, شاید بہت تھک گیا. حسین نے کہا عباس تو سواری کا دوسرا جانور لاؤ. سواری کا دوسرا جانور لایا گیا, سواری کا تیسرا جانور لایا گیا, سات جانور بدلے گئے, مگر آج کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے, سب وہیں پہ ٹھوکر کھا کے رکے جا رہے ہیں. حسین یہ قافلہ حیران ہوتا جا رہا, اور حسین کو انہیں بھی ایک پیغام دینا, اور انہیں بھی ایک پیغام دینا ہے جو یہاں کربلا کے باشندے, جو کتنی دیر میں وہ لوگ جمع ہو گئے. قافلہ آیا ہے, اس کے ساتھ ایک فوج ہے حر کی, وہ کافی دیر سے رکے ہوا ہے, اور رکا ہوا ہے قافلہ. قریب ترین قبیلہ بنی اسد تھا, وہاں کے لوگ آ گئے. حسین نے ایک مرتبہ کہا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا فرزند رسول اس جگہ کا نام نینوا. حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا. کسی نے کہا کہ مولا اس کا نام شط الفرات ہے. حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا. کسی نے کہا مولا ہم کبھی کبھی اس کو بابل بھی کہتے. کہا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا. کسی نے کہا مولا ہم اسے خازریہ بھی کہتے. حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا. سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے. نہیں فرزند رسول, وہ یہی نام ہم کو پتا ہے. حسین نے کہا نہیں, کوئی نہ کوئی نام اور ہے. تمہارے قافلے میں, تمہارے قبیلے میں کوئی بہت بوڑھا آدمی نہیں جو پرانی چیزیں جانتا ہو؟ کہ مولا ہے تو ایک بوڑھا آدمی, اتنا بوڑھا ہو گیا کہ وہ چلنے کے قابل نہیں, ہر جگہ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. کہا اس کو لے کر آؤ. وہ آیا. حسین نے کہا یہ بتاؤ اس جگہ کا اور کون سا نام ہے؟ یہ نام تو تمہارے ساتھیوں نے بتائے, اور کون سا نام ہے؟ کہا مولا میں کبھی وہ نام زبان پہ نہ لاتا, लेकिन आपका हुक्म है इस जगह को हम करबला भी कहते हैं। वह करबला का नाम सुनना था। हुसैन ने कहा बास खेमे लगा दो, सवारियां बिठा दो, सैदानियों को खेमों में पहुंचा दो। वो बूढ़ा तड़प उठा, सारा बदन कांप गया, हाथों को जोड़ा कहा फर्जंद रसूल ये कदम ना कीजिए, यहाँ पे कयाम ना करें, इसलिए कि ये वो जमीन है जहाँ कोई नबी या नबी ज्यादा आया मगर उसके बदन से खून ना बहा हो, ये हो ही नहीं सकता। मौला ने कहा तू खून बहने की बात कर रहा, हमें पता है यहीं हमारी गर्दनें कटेंगी, यहीं हमारे लाशें गिरेंगे, यहीं पे हमारा घराना बेसहारा होगा, यहीं पे हमारी बच्चियां यतीम होंगी, हमें तो यहीं रहना, और ये अल्लाह ने रोजे अजल से बता दिया। अब उधर खेमे लग रहे हैं, और एक मर्तबा पहले खेमे में ज़ैनब कुबरा पहुंची, फिज़ा से कहा जरा भैया को बुला के लाना। वो यही वक्त होगा क्योंकि रिवायत है कि सूरज डूबने के करीब था। हुसैन आए कहा कि ज़ैनब इस वक्त एक जरूरी काम मुझे करना, लेकिन तुमने बुलाया है, बताओ क्यों बुलाया। कहा भैया ये कौन सी जमीन में तू आ गया है, जब से मैंने यहाँ कदम रखा है मेरा दिल उल्टा जा रहा है, मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है, लेकिन भैया अभी थोड़ी देर पहले से तो मैं किसी बीबी के रोने की आवाज भी सुन रही हूँ। हुसैन ने सर झुका के कहा ज़ैनब बहन अम्मा फातिमा की आवाज नहीं पहचानी, ये अम्मा है जो मेरे साथ करबला आई है, और अभी से फातिमा का मातम शुरू हो गया। और हुसैन एक मरतबा कहते हैं ज़ैनब एक आखिरी काम कर लो और उसके बाद फिर आता हूँ। ये कहे के बाहर आ, बनी असद का सारा कबीला जमा हो चुका है। जब ये पता चला हुसैन को यहाँ रोकना, हुसैन ने कहा जमीन मुझे खरीदना। कबीला बनी असद ने तड़प के कहा मौला रसूल के बेटे हमारे आका आप हमारे मेहमान हैं, जब तक आपका दिल चाहे आराम से यहाँ रहिए, खरीदना किस लिए। कहा कि चंद दिनों का कयाम नहीं है, हमें कयामत तक हम इसी जमीन पे रहना है। चुनाचे जमीन खरीदी जाएगी, बाजार की जो मार्केट वैल्यू थी उस पे जमीन खरीदी भी गई। मगर हुसैन ने कहा दो शर्तें हैं, अल्लाह हम और आप अय्याम अदा की आज तीसरी मजलिस है, दूसरी तारीख है ऑस्ट्रेलिया में, हुसैन का हम कर रहे हैं घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे का टाइम निकालते हैं, लेकिन पाकिस्तान में या इंडिया में लोग 24-24 घंटे मसरूफ होंगे। अरे कोई हक अदा नहीं कर सकते आका हुसैन के सिर्फ एक जुमले का। कि हुसैन ने कहा मगर मेरी दो शर्तें, पहली शर्त ये कि कयामत तक जब भी मेरा कोई जायर मेरी कब्र की जियारत के लिए आए उसे हुसैन का मेहमान बना के ठहराना। हुसैन ने अकबर को याद नहीं किया अभी करबला में, हुसैन ने आसिम को याद नहीं किया है, हुसैन ने अब्बास को याद नहीं किया है, अरे हुसैन ने असगर को याद नहीं किया, हुसैन ने आपको याद किया, मेरा मेहमान बना के ठहरना। आपने आजकल सुना भी होगा और मेरे हिसाब से आप में से हर एक उस मरहले से गुजरा भी है। अभी आप आजकल जाते हैं ना अरबईन पे और पैदल जियारत करते हैं तो पूरे रास्ते इराक के मोमिनीन आपके हाथ पांव जोड़ के आपको अपना मेहमान ठहराते हैं। ये वही बनी असद की सुन्नत है, ये वही आका हुसैन की वसीयत पे अमल हो रहा है। आप उनके मेहमान नहीं हैं, आप हुसैन के मेहमान हैं, कि हुसैन ने उनसे वादा लिया था। और फिर दूसरी शर्त कि जब ये लश्कर यजीद चला जाए और हमारे बेगोर और कफन लाशें जलती रेती पर पड़े हो तो आके हमारे लाशों को दफन कर जाना। बनी असद के मर्दों ने हाथ जोड़े रोते हुए कहा मौला हमारा आपसे वादा है। कहा अच्छा आप जाओ अपनी औरतों को भी ये पैगाम दो कि मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक मर्तबा बनी असद की औरतों को पैगाम मिला, तो चादरें पहन के अबाया पहन के एक मर्तबा हुसैन की बारगाह में आती हैं, हाथ जोड़ के कहती हैं हमारी शहजादी फातिमा के वारिसों फरजंद, अरे क्या हम भी इस लायक हैं कि आपकी कोई खिदमत करें। कहा लश्कर यजीद चला जाएगा, शायद तुम्हारे मर्द उसके डर से घरों से बाहर ना निकले, तो हमसे वादा करो कि जब फुरात के किनारे पानी भरने आओगी ना तो पानी भरने के बाद हमारे लाशों को भी दफन कर जाओगी। रोते हुए आंसू बहाते हुए सारी औरतों ने वादा किया। एक मर्तबा कहा जाओ अब अपने बच्चों को भिजवाओ, नन्हे नन्हे बच्चे औनो मोहम्मद के हमसिन बच्चे। एक मर्तबा خوشی کے عالم میں آگے بڑھے کہ اللہ آج ہم بھی اس قابل ہو گئے کہ ہمارے آقا نے ہمیں بلایا ہے. ایک مرتبہ آ کے ہاتھ جوڑے, مولا ہمیں کس لیے بلایا؟ کہا ہو سکتا ہے لشکر یزید کے ڈر سے نہ تمہارے باپ گھر سے باہر نکلے نہ تمہاری مائیں گھر سے باہر نکلے, مجھ سے وعدہ کرو کہ کھیلتے کھیلتے کھیل کے بہانے فرات کے قریب آ جانا اور اپنی ننی ننی مٹھیوں میں خاک لے کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. تم زمین تو نہیں کھود سکتے, تم قبر تو نہیں تیار کر سکتے, ایک مٹھی خاک ڈال دینا. تو دو محرم کو حسین کربلا پہنچے, بتایا دین کا کام مرد بھی چاہیے, عورتیں بھی چاہیے, بچے بھی چاہیے. بس یہاں میرے آخری جملے آ گئے. اور کربلا میں آج بھی یہ طریقہ کار کہ جب وہ وقت آتا ہے عصر عاشور کے قریب ہے, اس کے بعد ایک مرتبہ ایک ایسا قبیلہ ہے جو کفن پہن کر کندھوں پہ بیلچے رکھ کے دوڑتا ہوا اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آقا حسین کے حرم میں داخل ہوتا ہے. کندھوں پہ بیلچے ہیں, ہاتھ میں ٹوکریاں ہیں, آواز دیتے ہوئے آتے ہیں, آقا آپ نے ہمارے باپ سے, آپ نے ہماری ماؤں سے, آپ نے ہمارے بزرگوں سے وعدہ لیا تھا کہ ہم لاشیں دفن کریں, ہم آ گئے, ہم لاشیں دفن کرنا رہے. لیکن اس وقت اگر ایک سوال میں اپنے آقا سجاد سے کر لیتا, اس وقت مولا آپ کے بابا کی آخری وصیت نے یہ بتایا کہ آپ کے بابا یہ چاہتے ہیں کہ اگر میرا لاشا دفن نہ ہو تو کم از کم ایک مٹھی خاک ہی کوئی میرے لاشے پہ ڈال دے. یہی تو بچوں سے کہا نا, ایک مٹی خاک. تو مولا اگر آپ لاشا دفن نہیں کر سکتے تھے کب 11 محرم کو تو ایک مٹی خاک ڈال دیتے. آپ کو پتا ہے آپ کا آقا سجاد مجھے اور آپ کو کیا جواب دے گا؟ ارے اپنے ہاتھ آپ کے سامنے رکھے گا, کہے گا ہائے وہ جوان بیٹا کیا کرے جس کے گلے میں توق اور پاؤں میں بیڑی کے ساتھ ہاتھوں میں ہتھکڑی بھی ہے, وہ چاہے بھی تو بابا کے لاشے پہ مٹی خاک کیسے ڈالے. اجركم لله على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وسيعلم الذين ظلموا أيا منقلب ينقلبون. پہلی معذرت تو یہ کہ آج مجلس 5-7 منٹ زیادہ ہو گئی کیونکہ شب جمعہ تھی اور شب جمعہ ویسے ہی پورا سال ہم حسین کے غم میں آنسو بہاتے ہیں, آج رات اور ضروری تھا. خدا بندہ تو جواستہ میرے مظلوم آقا حسین کی اس شہادت اور اس معصوم کے اس بہتے خون کا جو کربلا کی زمین پہ جذب ہو کر اسے خاک شفا بنا گیا, دنیا بھر کے بیمار مومنین اور مومنات کو خصوصاً کورونا کے جتنے مریض ہیں کسی بھی فرقے اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما. اور پھر ہماری میلبرن کی اس کمیونٹی میں اور آن لائن مجالس سننے والوں میں جو بیمار ہیں, اور پھر ہمارے برادر محترم عدنان کلیم صاحب کی بچی ہے, عقیل مرجن صاحب کی بچی ہے, ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما. خدا بندہ میدان کربلا کے نیبے گور و کفن لاشوں کا واسطہ کہ آقا حسین تو اتنی وصیتیں کر کے گیا پھر بھی 3 دن یہ لاشیں جلتی رہتی پہ بے گور و کفن پڑے گئے. آج کی شب جمعہ ہم میں سے ہر ایک کے مرحوم والدین کی خاص طور پر اور تمام مرحوم مومنین و مومنات اور بانی الاسر اسلامک سینٹر میلبرن مرحوم غلام عباس پنجو صاحب آلہ علین میں ان سب کو جوار اہل بیت اور شہداء کربلا کے ساتھیوں میں شامل فرما. خدا بندہ میدان کربلا میں حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ صاحبان ایمان کو روزگار رزق روزی کے ہر امتحان سے, سب میلبرن والے تو نہیں ہیں مجلس سننے والے جو یہاں پر ہیں, دنیا میں کہیں بھی ہیں جو آن لائن بات سن رہے ہیں, ان سب کو اس پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ حاجت زدہ لوگ, آج کی 3 محرم کی شب حاجت پوری ہونے کی رات ہے, خدا بندہ جس جس کی جو حاجت ہے مشکل کشا کائنات حلال مشکلات علی ابن ابی طالب اور اس کے باب الحوائج بیٹے عباس علمدار کا واسطہ سب کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرما, ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, ظہور امام زمانہ میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.